संघीय संसद की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। भारत में संघीय संसद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु संविधान की धारा 79 के अधीन उसको संसद का हिस्सा स्वीकार किया गया है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होने के नाते संसद की बैठकें बुलाता है, बैठकों को स्थगित करता है, संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति देता है तथा नवनिर्वाचित संसद की प्रथम बैठक तथा प्रत्येक वर्ष संसद की प्रथम बैठक का उद्घाटन करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर संसद के निम्न सदन लोकसभा को अवधि पूरी होने से पहले भंग कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। दो, संसद के दो सदन हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ टू हाउसेस। भारत में अमेरिका, कनाडा तथा इंग्लैंड आदि देशों की संसदों की भांति दो सदन हैं। धारा 79 के अनुसार ऊपरी सदन का नाम राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तथा निम्न सदन का नाम लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल रखा गया है। तीन, संघीय संसद प्रभु सत्ता संपन्न नहीं। यूनियन पार्लियामेंट यूनियन पार्लियामेंट इज नॉन सॉवरन। भारत की संसद इंग्लैंड की संसद की भांति प्रभु सत्ता संपन्न नहीं है, क्योंकि एक, ये केवल उन विषयों पर ही कानून बना सकती है जो संविधान द्वारा इसे सौंपे गए हैं। दो, इस द्वारा पास किए गए कानूनों के औचित्य को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। तीन, यह संविधान के मौलिक ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। पेज 190। चार, इस द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधनों पर 1/2 राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति लेनी आवश्यक है तथा इस द्वारा पास किए गए बिलों पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, भले ही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति केवल अवरोधक ही होती है। चार, दोनों सदनों की शक्तियां समान नहीं है। पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेज आर नॉट इक्वल। संघीय संसद की शक्तियां समान नहीं है। लोकसभा लोकप्रिय सदन होने के कारण कई क्षेत्रों में राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। कार्यपालिका लोकसभा के सामने उत्तरदायी है तथा वित्तीय बिल भी पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है तथा राज्यसभा उस पर केवल 14 दिन की देरी डाल सकती है। पांच, दोनों सदनों में सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था। प्रोविजन ऑफ द नॉमिनेशन इन बोथ द हाउसेस। संविधान की धारा 80(1) के अधीन राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले वरिष्ठ व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। संविधान की धारा 331 के अधीन राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में अधिकतम 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 6. संघीय संसद के पास केवल वैधानिक कार्य ही नहीं है। ओनली लेजिस्लेटिव पावर्स आर नॉट विद द यूनियन पार्लियामेंट। संघीय संसद वैधानिक कार्यों के अतिरिक्त कार्यकारी कार्य भी करती है। संविधान की धारा 75(3) के अधीन मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप में लोकसभा के सामने उत्तरदायी बनाया गया है, जो कि भिन्न भिन्न विधियों से मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उत्तरदायी बनाती है। 7. दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द हाउसेज इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। साधारणतः संघात्मक राज्यों में ऊपरी सदन में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, परंतु भारत में संघीय संसद के दोनों सदनों में भिन्न भिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। यही कारण है कि दोनों सदनों में भिन्न भिन्न राज्यों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न है। 8. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था। प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। संविधान की धारा 108 108(1) आर्टिकल 108(1) के अंतर्गत जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक 3 बार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहली बार 1961 में दहेज विरोधी बिल, डाउरी प्रोहिबिशन बिल, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग रद्द करने संबंधी बिल, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल, और तीसरी बार 2002 में आतंकवाद निरोधक बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के पास करने संबंधी दोनों सदनों के बीच पैदा हुए मतभेदों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। रिपीट, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। नीचे हम संसद के दोनों सदनों की बनावट तथा शक्तियों का वर्णन करते हैं।